ओम शिव 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 शिव। अनंत करुणा के सागर करुणा वरुणालय परमपिता परमात्मा की अत्यंत अहेतु की कृपा से और श्रद्धेय गुरुजनों के शुभ आशीर्वाद से उन्हीं के पावन संकल्प से भगवान की इस दिव्य विभूति पवित्र सागर तट पर देवाधिदेव महादेव भगवान बाबुलनाथ जी के पावन सानिध्य में परम पवित्र इस ब्रह्म विद्यापीठ में गुरुजनों की तपस्थली में बैठ करके हम सब साधक वृंद अपने जीवन को धन्य करने की आराधना कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य करने की साधना कर रहे हैं। शिव अवतार आद्य जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित धन्याष्टकम नामक स्तोत्र के माध्यम से हम अपनी प्रकृति का, अपने मानस का और अपने जीवन का विश्लेषण कर रहे हैं। अपने लिए कुछ मापदंड तय कर रहे हैं, हम कुल माइंडस्टोन्स हम लोग तय कर रहे हैं, कहां हम खड़े हैं, कहां हमें जाना है। इसका एक अवलोकन, इसका एक चिंतन, इसका एक मनन हम सब लोग मिलकर के पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। करंट विचार ये चल रहा है, एषणा त्रय उत्तरेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा से अपने आप को ट्रांसफर करके साधना त्रय श्रवण मनन और निधि ध्यासन में कैसे ले जाया जाए, ये हमारे अभी चिंतन का विषय चल रहा है। पंचम श्लोक के प्रथम पाद का ही हम चिंतन कर रहे हैं, त्यक्त्वा एषणात्रयम् अवेक्षित मोक्ष मार्गाः ते धन्याः। जिन्होंने एषणात्रय का त्याग करके मोक्ष मार्ग को समझा, मोक्ष मार्ग का अवलोकन किया, मोक्ष मार्ग को स्वीकार किया, ते धन्याः, वे लोग धन्य हैं। यहां पर मैं साधकों से एक दो चीज निवेदन करके फिर इस विषय को थोड़ा और विश्लेषण करके फिर मैं आगे वाली चीज में जाना चाहूंगा। साधकों की द्विविध प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है, दो प्रकृति के साधक होते हैं। कुछ साधक होते हैं परप्रज्ञ, और कुछ साधकों की प्रकृति होती है स्वप्रज्ञ, और इसमें उत्तम माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है जो साधक स्वप्रज्ञ हैं। परप्रज्ञ का मतलब क्या है? परप्रज्ञ का मतलब यह है कि किसी ने चिंतन करके, विचार करके, समझ करके, सार निकाल करके बता दिया और आप उसमें लग गए, आपने अपनी बुद्धि नहीं लगाई। हम प्रायः ऐसा करते हैं, अपना ज्यादा दिमाग लगाते नहीं है, अपने को ज्यादा उसमें इन्वॉल्व करते नहीं है, जो कह दिया, जो बता दिया, कम विश्वास से, आधे विश्वास से, पूरे विश्वास से, जैसे भी हो हम उसमें लग जाते हैं। ये परप्रज्ञ साधक की स्थिति है, जो बताया जैसा बताया। और इससे बहुत बार बहुत प्रकार की समस्याएं होती है साधकों के जीवन में। आज इन्होंने जो बताया वो ठीक लगा, वो करने लग गया, कल कोई दूसरा आ गया, दूसरे ढंग से बता दिया, उसमें लग गया। ऐसी जो मनोदशा वाले साधक होते हैं उनको परप्रज्ञ साधक माना। साधक तो है, साधना तो कर रहा है, कुछ ना कुछ करने में लगा हुआ है, परंतु स्वयं की बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा है। एक दूसरे प्रकृति का साधक होता है, वो भी बड़ा श्रद्धावान है, परंतु वो स्वप्रज्ञ है। जो बताया, जो सुनाया, जो समझा, उसको चिंतन करता है, स्वयं मनन करता है, अपने दिमाग और अपनी बुद्धि लगाता है, और जब बुद्धि में बैठ जाता है, जब दिमाग में बैठ जाता है, तो फिर जीवन में उतारता है, जीवन में उतारने की चेष्टा करता है। ऐसा जो थोड़ा परिश्रम करने वाला जो साधक है, इसको बोलते स्वप्रज्ञ साधक। अपनी प्रज्ञा का प्रयोग करता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, अपने दिमाग का प्रयोग करता है। वो ज्यादा श्रेष्ठ है, वो ज्यादा अच्छा है। इसलिए देखो, हमारे आध्यात्मिक यात्रा का मूल बिंदु है जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा यदि जीवन में है तो साधना का प्रारंभ होगा, और जिज्ञासा यदि नहीं है तो साधना प्रारंभ नहीं होगी। इसलिए जिज्ञासा होना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। और जिज्ञासा होगी तो जानने की इच्छा होगी, जानने की इच्छा का ही नाम जिज्ञासा, फिर वो खोज करना प्रारंभ करेगा, फिर वो साधना आरंभ करेगा। तो आचार्यों का और गुरु लोगों का ये काम होता है कि वो साधकों को स्वप्रज्ञ बनाए। गुरु का ये काम नहीं होता कि वो ऊपर से अथवा बाहर से आपके भीतर ज्ञान भरे। ज्ञान बाहर से भरने की चीज नहीं है, ज्ञान बाहर से भरा जाने वाला पदार्थ नहीं है। जिस ज्ञान की हम यहां चर्चा कर रहे हैं अथवा जिस ज्ञान को प्राप्त करने से हम कृतार्थ हो जाएंगे, वो ज्ञान तो हमारे अपने आत्मा का स्वरूप है, हमारे भीतर लबालब भरा हुआ है। गुरु को बाहर से कुछ भी नहीं भरना है ज्ञान के नाम पर, और जो भरने की कोशिश करते हैं वो उल्टा ही करते हैं। तो फिर गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है जो उस ज्ञान के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं, जो आवरण पड़ा हुआ है, उस आवरण को दिखा दे और ऐसी युक्ति बता दे कि उस युक्ति से वो विश्लेषण करते हुए वो एक दृष्टि प्राप्त करे और उस दृष्टि से वो आवरण हट जाए। हटाने का काम भी साधक का ही है, गुरु नहीं हटाएगा। गुरु का काम क्या है? वो युक्ति दिखाने का। इसलिए सोक्रेटिस ने मेरे ख्याल में बताया है, सोक्रेटिस ने बताया, गुरु का काम है दाई का काम, नर्स का काम। बच्चा तो माँ ही पैदा करती है, नर्स क्या करती है? उसको हेल्प करती है। दाई क्या करती है? उसको हेल्प करती है। ज्ञान तो साधक के भीतर से ही प्रकट होगा, ज्ञान तो साधक के अंतरात्मा से ही प्रकट होना है। गुरु का काम केवल दाई का काम है, इसलिए वो थोड़ा सा उसको हेल्प कर देता है कि उसको कष्ट कम हो, उसको पीड़ा कम हो, उसको वेदना कम हो, और अच्छी तरह से वो चीज प्रकट हो जाए। इसलिए चिंतन को जागृत करना, आपके मन में प्रश्न पैदा करना, हमारे मन में प्रश्न पैदा करना, ये गुरुओं का काम है, ये शास्त्र का काम है, ताकि हमारा बुद्धि थोड़ी एक्टिव हो, हम उसमें पार्टिसिपेट करें, वो हमारा जीवन का अंग बने, वो हमारी साधना बने। नहीं तो चीजें बड़ी टेम्परेरी हो जाती है, बड़ी ऊपर ऊपर से चली जाती है, एक पानी के प्रवाह जैसा बह जाता और हम लोग निकल जाते हैं। इसलिए जब भी मैं आप लोगों से संवाद करता हूं और बीच बीच में जब प्रश्न पूछता हूं तो मेरे मन में तनिक भर भी ये विचार नहीं होता है कि मैं आपकी परीक्षा लेता हूं। मेरे दिल के किसी भी कोने पर ये इच्छा नहीं है कि जरा इनको हिला करके देखे कि ये कहां बैठे हुए हैं। ये मैंने मेरे गुरु से नहीं सीखा। मेरी हार्दिक इच्छा होती है कि आप उस चीज में इन्वॉल्व हो और आपका स्वयं का चिंतन प्रारंभ हो, आपका स्वयं का विचार प्रारंभ हो और आप स्वयं विचार करते 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 एक जगह पहुंचे, एक निश्चय पर पहुंचे और उसको आपका मन और आपकी बुद्धि स्वीकार करे, तब वो चीज हमारी अपनी बनती है, हमारा जीवन का हिस्सा बनती है। नहीं तो किसी चीज को मैंने विचार करके रखा, मैंने चिंतन किया, मैंने उसको समझा तो वो चीज तो मेरी रह गई। आपने थोड़ा सा सुन लिया तो वो पानी के जैसे बह करके निकल गया। तो जो मेरा चिंतन था, मेरा विचार था, उससे आपको बहुत ज्यादा गहरा फायदा नहीं होगा। आपको तब फायदा होगा जब आप चिंतन कर ले। तो भैया यहां बैठ करके मेरा काम आपके प्रश्नों का जवाब देना नहीं है, मेरा काम है आपके प्रश्न जगाना, आपके मन में प्रश्न पैदा करना। ठीक बात है कि गलत बात है? गलत बात है। हमको तो जवाब देना चाहिए, यहां बैठ करके हम प्रश्न पैदा कर दे। आपके तो आगे ही बहुत सारे प्रश्न हैं, फिर और आपका काम बढ़ा दे तो कैसे होगा? प्रश्न किस दिशा में पैदा करने हैं? आत्मा के खोज की दिशा में। वो प्रश्न हमारे पहले से होते नहीं है, वो हमारा साइलेंट जोन होता है। इसलिए आचार्यों का, गुरुजनों का, शास्त्रों का हम निरंतर देखते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न जगाते हैं। तो कल हम लोग एषणा त्रय की चर्चा कर रहे थे, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। इसका जितना हमारी बुद्धि थी, जितनी हमारी समझ थी, कल हमने मनन किया। यहां से जाने के बाद भी यही चिंतन कल मेरे मन में चलता रहा। रात में सोने से थोड़ा पहले चलते चलते अचानक दो तीन प्रश्न उठ गए, दो एक प्रश्न उठ गए। अब वो प्रश्न आपके लिए उठाए कि ना उठाए? आप अपने विचार मेरे से जरूर शेयर करना। मेरा जो चिंतन है वो भी बताऊंगा, प्रश्न है वो भी बताऊंगा, आपके विचार भी मैं सुनना पसंद करूंगा। जैसे मां बाप की पुत्र के प्रति जो लगाव है, जो झुकाव है, जो अटैचमेंट है, इसको शास्त्रों ने पुत्रेषणा शब्द से कहा और इसको बंधन का कारण माना, पुत्रेषणा। इसी प्रकार वित्तेषणा, लोकेषणा। तो मेरे मन में प्रश्न ये उठा कि इसका उल्टा भी तो देखा जाता है। जैसा मां बाप का अपने संतान के प्रति लगाव होता है, जैसा मां बाप का अपने संतान के प्रति झुकाव होता है, वैसा ही संतान का भी तो अपने मां बाप के प्रति बहुत अनुराग होता है, बहुत झुकाव होता है, बहुत अटैचमेंट होता है। तो मातृएषणा नाम की कोई चीज है कि नहीं है? पितृएषणा नाम की कोई चीज है कि नहीं है? कैसा रखेगा? ओए मेरा प्रश्न वही है, वो क्यों नहीं भूल जाती? शास्त्र ने तो कहीं बोला तो नहीं है कि मातृएषणा भी होती है, पितृएषणा भी होती है, परंतु मां का अपने संतान के प्रति जो अटैचमेंट है वो मां को कहा जाता है कि ना ठीक चीज नहीं है, छोड़ो इसको, क्योंकि ये पुत्रेषणा है, ये बंधन का कारण है। परंतु अपने बेटे का और बेटी का जो मां के प्रति अनुराग है, अच्छे संतान की आसक्ति होती है कि नहीं अपने मां बाप के प्रति? प्यार होता है कि नहीं होता है? तो ये एषणा है कि नहीं है, ये प्रश्न उठा मेरे मन में। भगवान प्रकट हो जाते? शाबाश, मेरे मन में भी वही बात आया। देखो विट्ठल पैदा हो गए। आप लोगों का चिंतन एडवांस तो है भैया, ठीक दिशा में तो सोच रहे हैं। उस मां ने भी ठीक बताया, जो मां ने बताया कि वो एषणा नहीं है, श्रद्धा है, विवाद ठीक है। आपने बताया विट्ठल का तो दृष्टांत दिया, मेरे मन में भी वही दृष्टांत आया था कि विट्ठल का कितना अनुराग था अपने माँ और बाप के प्रति, भगवान को इन वेटिंग खड़ा रहो, वेटिंग लिस्ट में भेज दिया। तो इसका अब ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई, हम लोग सहमत हैं कि संतान का जो मां बाप के प्रति अनुराग है वो ऐसा नहीं है, परंतु अभी भी एक प्रश्न बना हुआ है, वाई नॉट। हाँ तो ठीक है, वो तो एक दूसरा स्तर है, आत्मनस्तु कामाय वाला तो फिर सब एक स्तर में चला जाएगा, यहां थोड़ा सा एक डिफरेंस है। परंतु ऐसा क्यों होता है भैया? मन ये प्यार ऐसा क्यों नहीं बना? एक प्यार ऐसा बन गया और एक प्यार ऐसा नहीं बना बल्कि मुक्ति का साधन बन गया, ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण क्या है? कोई तो कारण होगा। माने है तो संबंध ही ना, माने मां का बेटे के साथ संबंध है, बेटे का मां के साथ संबंध है। संबंध हमेशा द्विष्ट होता है, दो पोल होते हैं उसके, दो एंगल्स होते हैं, एक एंगल मदर है, एक एंगल उसकी सन है, तो उसके उसकी डॉटर है, मां है, और एक तरफ बेटा उसकी संतान है, तो इन दोनों का आपस में संबंध है। एक का एक के प्रति जो संबंध है वो मुक्ति का कारण है, और एक का एक के लिए जो संबंध है वो बंधन का कारण है। अच्छा, बेटों की आसक्ति नहीं होती है, है? भक्ति तो आविर्भूत होती है, परंतु आसक्ति होती है कि नहीं बेटों की? आसक्ति कोई भी अच्छी चीज कैसे होगी भैया? अच्छा, आप लोग थोड़ा और चिंतन करना और मनन करना, मैं एक जस्ट पॉइंट आपके लिए उठा करके रखा, और आप गहराई से और थोड़ा शांति से मनन करेंगे तो लाइट आएगी इसमें, और अच्छा चिंतन कर रहे सब लोग, आप लोग अच्छे चीज दे रहे हैं। मेरा जो विचार आया वो मैं आपको रख दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ाता हूं विचार, मेरे को तो और आगे बहुत देर तक चलना है भैया। मुझे ऐसा लगा, माने मेरा चिंतन जहां तक पहुंचा वो चीज मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। एषणा शब्द का जो मूल है वो है इच्छ धातु, इच्छा। एषणा जन्म कब लेती है? जब हम किसी चीज को पैदा करने के लिए पहले संकल्प लेते हैं, संकल्प से उस वस्तु के प्रति शोभन अध्यास हमारे मन में पैदा होता है, ये बहुत अच्छा है, ये मेरे सुख का साधन है, और उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए हम अपना खून पसीना बहाते हैं, परिश्रम करते हैं, और उस संकल्प के अनुकूल वस्तु को पैदा करते हैं। तो वो वस्तु जो है वो हमारे इच्छा का निर्माण होता है, वो हमारे इच्छा की कृति होती है, और इच्छा की कृति होने के कारण हमारे अत्यंत आसक्ति का स्थान होता है। जैसे किसी ने आपको एक गिलास की जरूरत थी और कोई एक पुराना गिलास कांच का आपके घर में पड़ा था, आपको मिल गया, और अचानक वो आपके हाथ से गिरा और गिलास फूट गया, आपको थोड़ा दुख हुआ कि अच्छा गिलास था, काम चल रहा था, काम की चीज थी, फूट गई। फिर आपने कहा कि क्यों ना मैं अपना एक गिलास बना दूं, आपके मन में संकल्प आया, फिर आपने सामग्री इकट्ठी की और उस गिलास को आपने जन्म दिया, बनाया, और वो बन करके तैयार हुआ और आपके हाथ से गिर करके फूट गया, फिर आपको दुख होगा। तो दो बार का जो दुख, इसमें कुछ डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? कौन वाला दुख ज्यादा होगा? बाद वाला दुख ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें आपकी इच्छा, आपका संकल्प, आपका प्रयत्न, माने लगभग आप उसके भीतर प्रविष्ट करे हुए थे, आपको लगेगा कि आपका कोई हिस्सा ही टूट गया। तो जितनी आसक्ति हमको अपनी क्रिएशन से होती है, अपनी सृष्टि से होती है, अपने द्वारा सृजित पदार्थों में होती है, इतनी आसक्ति हमको प्राकृतिक पदार्थों में नहीं होती। मां बाप हमारे संकल्प का विषय नहीं है, हमारे संकल्प की कृति नहीं है, वो हमारे लिए गॉड गिफ्टेड है। वो हमारे लिए क्या है? गॉड गिफ्टेड है। तो मां बाप के साथ जो संतान का संबंध होता है वो कृतज्ञता का संबंध होता है, आसक्ति का संबंध कम होता है। आसक्ति रहती है उसमें भी कुछ मात्रा में, और वो आसक्ति नुकसान ही करती है। हमारी टोटल आसक्ति मां बाप के प्रति भक्ति है ऐसी बात नहीं है। कुछ हमारे अपने सुख से निमित्तक, हमारे अपने संबंधों के निमित्तक, हमारे अपने राग के निमित्तक आसक्ति संतान की भी मां बाप के प्रति होती है, और वो आसक्ति जो है कोई बहुत अच्छी उपकारक आसक्ति नहीं होती है। परंतु इसके साथ ही एक सजग संतान का अपने मां बाप के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव होता है कि आप ही वो दरवाजा थे जिसके माध्यम से मुझे इस संसार में प्रवेश मिला और ये शरीर मिला, और संसार में प्रवेश मात्र नहीं मिला, एक तरह से मेरे लिए मोक्ष का दरवाजा खुल गया। अब मैं साधना कर सकता हूं, अब मैं भजन कर सकता हूं, अब मैं बोल सकता हूं, अब मैं सुन सकता हूं, अब मैं अनुभव कर सकता हूं, अब मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, ये आपके कारण मेरे लिए संभव हुआ। तो एक गहरी कृतज्ञता, और वो आसक्ति धीरे धीरे कन्वर्ट होती है, सजगता से कन्वर्ट होती है और कृतज्ञता में बदलती है, और कृतज्ञता जब और गहरी और प्योरिफाइड होती है तो वो श्रद्धा में बदलती है, और श्रद्धा जब और घनीभूत होती है तो आचार्य, तो फिर मातृ देवो भव, फिर वो एक सिंबोलिक चीज रह जाती है, एक देवता का अवतार नजर आने लगता है, एक भगवान का अवतार नजर आने लगता है, एक भगवान की प्रतिनिधि नजर आने लगता है। ये मातृ देवो भव उनके लिए है भैया जो श्रद्धा से परिपूर्ण है, ये उनके लिए नहीं है जो अपने मां बाप पे हाथ उठाते हैं। ये सूत्र उनके लिए काम नहीं करता है जो अपने मां बाप का अपमान करते हैं, जो अपने मां बाप का अनादर करते हैं, जो अपने मां बाप के प्रति कृतज्ञ हैं, उनके जीवन में ये सूत्र कभी काम नहीं करेगा कि मां देवता है और वो देवता के रूप में उनके जीवन में प्रकाश प्राप्त करेगी। मां उनके लिए एक केवल यंत्र है जिसने पैदा किया। मां उसी सत्ता के लिए देवता है जिसके दिल में गहरी कृतज्ञता है, जिसके दिल में गहरी श्रद्धा है, जिसके दिल में गहरी भक्ति है, और ये कृतज्ञता इस रूप में है कि तुम ही तो दरवाजा हो जहां से मैं इस मोक्ष राज्य में प्रवेश कर पा रहा हूं, जहां से मैं इस सुंदर भगवान की खिली हुई बगिया में एक पुष्प की तरह मैं भी प्रकट हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि संबंध तो द्विविध है, दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है। आसक्ति कुछ संतान की भी होती है मां बाप के प्रति, और आसक्ति यदि रागात्मिका ही केवल है, मैं मेरे मां बाप को मेरे सुख का कारण भर होने के लिए प्यार करता हूं, और मेरे मुक्ति के प्रति और मेरे को प्रकट करने के प्रति उनकी क्या दिव्य भूमिका है, और उनकी तपस्या से मेरा जीवन संभव हुआ है, और आज मैं जीवन में जिस स्तर पर हूं, जहां खड़ा हूं, इनके पीछे उनकी तपस्या और त्याग बड़ा कारण है, इस भाव से जब शिशु, जब संतान कृतज्ञता से भर जाती है, तो ये कृतज्ञता फिर वही रिलेशन धीरे धीरे कृतज्ञता में बदल जाता है, और कृतज्ञता घनीभूत होकर के श्रद्धा में, श्रद्धा भक्ति में, और भक्ति परमात्मा को प्रकट कर देती है। इसलिए विट्ठल को आना पड़ा, और केवल आना ही नहीं पड़ा, खड़ा रहना पड़ा। इसलिए शास्त्र ने भी कहा, पहले मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, फिर आचार्य देवो भव। तो ये जो एक डिवाइनिटी है रिलेशंस की, टेलीसन को किस डिवाइनिटी तक ले जाया जा सकता है, किस पवित्रता तक ले जाया जा सकता है, जिसको हम बंधन 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 करके हमेशा चिल्लाते और रोते रहते हैं, उसको मुक्ति का दरवाजा बनाया जा सकता है। आसक्तियों का जब त्याग हो जाता है संबंधों से, आसक्ति से शून्य जब हमारे संबंध हो जाते हैं, तो वे संबंध फिर बंधन कारक नहीं रहते, वे संबंध फिर मुक्ति के दरवाजे बन जाते, साधना के दरवाजे बन जाते, साधना का पथ बन जाते। हमारा तो पूरा जीवन जैसे कपड़ा धागों से गूंथा होता है ना, आतान और वितान। कपड़ा क्या है? आड़े और टेढ़े धागे ही तो है, और क्या है? इसी प्रकार हमारा पूरा जीवन ये रिश्तों के धागों से गूंथा हुआ है। पूरा एक कपड़े की तरह गूंथा हुआ है, और इन रिश्तों के धागों से यदि हम आसक्ति को धो दे तो ये ऐसा पवित्र सागर बन सकता है जैसे कबीर ने कहा, ज्यों की त्यों रख दीनी सदरिया। आसक्ति का यदि दाग लगा दिया तो ये चादर गंदी हो जाएगी, और आसक्ति को धो दिया एकदम विवेक से, विचार से, चिंतन से, स्वप्रज्ञा से, और ये काम स्वप्रज्ञा से होगा, केवल परप्रज्ञ बन करके बैठे रह जाने से नहीं होगा। स्वप्रज्ञ बनना पड़ेगा, चिंतनशील बनना पड़ेगा, मननशील बनना पड़ेगा, और मनन करते रहना पड़ेगा, तब चीजें धीरे धीरे हमें चमकने लगेगी, दिखने लगेगी और समझ में आने लगेगी। और जब चीजें समझ में आ जाएगी देखिए, ये जो हम लोग रिश्तों की गांठ में बंधे हैं, ये एक समझ की ही गांठ है। असल में एक समझ की ही, कोई दो शरीरों को एक साथ बांध करके थोड़ा ही रखा है। एक युवक होता है, एक युवती होती है, दोनों का एकदम स्वतंत्र जीवन होता है, किसी का किसी के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। एक सामाजिक प्रक्रिया के तहत हम ये निश्चित करते हैं कि आज से तुम पति हो और आज से तुम पत्नी हो, दोनों बंध गए। बनते हैं कि नहीं बनते? और मैंने सुना है कि केवल यहां ही नहीं बनते, सात जन्म के लिए बनते हैं। अरे बाप रे बाप, कितने बनते हैं? सात जन्म के लिए बनते हैं। तो ये जो बंधन है ये क्या चीज है, कैसे बंधे हम? कर्म से भी ज्यादा हम मान्यता से बंधे। माना हमने ये हमारे पति देव हैं और ये हमारी धर्म पत्नी है, ये जो मान्यता है, इस मान्यता ने, इस समझ ने इस बंधन को, इस रिश्ते के बंधन को बांधा। इसी प्रकार ये सारे रिश्ते और रिश्तों का पूरा संसार हमारे मन की एक मान्यता से बंधा हुआ है। इसके भीतर बहुत गहरी डिवाइनिटी आ सकती है, इसके भीतर बड़ी दिव्यता आ सकती है, इसके भीतर बड़ी पवित्रता आ सकती है, यदि हम थोड़ा गहराई से, थोड़ी उदारता से और थोड़ा सजगता से इसका चिंतन करें। और जीवन की जो सच्चाई है उसको हम थोड़ा एक्सेप्ट करें। हमारा जीवन कैसा है? हम पैसेंजर हैं, सब लोग क्या है? यात्री हैं। एक यात्रा में हम लोग चल रहे हैं, और हमारे जो अपने हैं, हमारे जो साथ रह रहे हैं, वो हमारे को पैसेंजर हैं। हमारे सहयात्री हैं, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारा समाज, हमारे बंधु, हमारे माता पिता, हमारे अपने सारे हम सहयात्री हैं। सबको अपने अपने स्टेशन पर जाना है, तो क्यों ना हम ऐसा जीवन बनाएं, क्यों ना हम ऐसा विचार बनाएं, क्यों ना हम ऐसा चिंतन बनाएं कि मेरे जीवन से, मेरे विचार से, मेरे चिंतन से मेरे सहयात्रियों को कुछ सहयोग हो। उनकी जो यात्रा है वो यादगार बने, इनकी जो यात्रा है वो सुखद बने, और इनकी जो यात्रा है वो मीनिंगफुल बने। यदि हम में से प्रत्येक सदस्य इस चिंतन से परिपूर्ण हो जाए कि मेरे सहयात्रियों की जो यात्रा है उसे मैं सुखद बनाऊंगा, मैं अपनी ऐसी भूमिका निभाऊंगा कि उनकी यात्रा ज्यादा मीनिंगफुल बने, तो क्या हमारे रिश्तों में, क्या हमारे संबंधों में कभी क्लेश आ सकता है? हमारे जीवन में कभी कटुता और कड़वापन आ सकता है? हम कभी संबंधों से उब सकते हैं? क्या हमारे संबंध और हमारा जीवन कभी हमारे ऊपर भार बन सकता है? शायद इस चिंतन से और इस मनन से हम परिपूर्ण हो जाए तो हमारा जीवन हमारे ऊपर कभी भार नहीं बनेगा, हमारे रिश्ते हमारे लिए कभी पीड़ादायक नहीं बनेंगे, हमारे संबंध हमारे लिए कभी बंधन का कारण नहीं बनेंगे, आसक्ति का कारण नहीं बनेंगे। ये हमारी उल्टी बुद्धि तो है जो पूरे उत्पात का कारण है। ये बुद्धि यदि सीधी हो जाए, और दूसरी जो चीज है, हमें बड़ी उदारता से एडजस्ट करना चाहिए। साधक का ये कर्तव्य है अपने दिल को बड़ा उदार बनाए। देखो, साधक जिस दृष्टि से संसार को देखता है और एक सामान्य आदमी जिस दृष्टि से इस संसार को देखता है, उनके दृष्टिकोण में बड़ा गहरा फर्क होता है, रात दिन का अंतर होता है। एक सामान्य आदमी सोचता है जितना मैं आंखों से देख पा रहा हूं इतना ही जीवन की सच्चाई है, यही सब कुछ है, मैं जैसा अनुभव कर रहा हूं, दिख रहा हूं, मैं बस इतना और ऐसा ही हूं। इसलिए जो संसार की सारी चीजें होती है उसके लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाती है। और एक साधक जो होता है वो देखता है कि मैं ऐसा दिखता तो हूं, ऐसा मुझे अनुभव हो तो रहा है, परंतु केवल इतनी ही सच्चाई नहीं है, सच्चाई अलग है। तो उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसका चिंतन बदल जाता है, उसकी समझ बदल जाती है, और फिर ये जो अत्यंत अनावश्यक चीजें हैं जहां हम पूरे उलझे रहते हैं, बेकार की चीजों में हम अपनी चेतना को, अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को, और बहुत बार तो हम इतनी बड़ी भूल करते हैं, हमारे एक तले का बिल्डिंग है, हमारे पड़ोसी वाला दो तला कैसे हो गया, क्यों हो गया? ये हमारे भीतर एक पीड़ा पैदा कर देता है, हमारे भीतर एक वेदना पैदा कर देता है, हमारे भीतर एक चिंता पैदा कर देता है। ये दृष्टि साधक की उपकारी दृष्टि, हितकारी दृष्टि नहीं है। इस विषय में मुझे भर्तृहरि का चिंतन बड़ा प्यारा लगता है। साधक अपने जीवन को किस दृष्टि से देखता है?
आयुर्वर्षशतम् नृणाम् परिमितम् रात्रौ तदर्धम् गतम्।
भर्तृहरि जी बता रहे हैं, भैया जो श्रेष्ठ आयु है हमारे हाथ में, जो टाइम है, श्रेष्ठ टाइम एक मनुष्य की उम्र का कितनी साल है? 100 साल। आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम। अच्छा, हम लोग जब 100 साल सोचते हैं तो हम लोगों को बड़ा लंबा दिखता है। अरे 100 साल मेरे पास पड़ा है, हमको थोड़ा ठीक ढंग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 100 साल का मतलब क्या है? हमारे हाथ में केवल 36,500 दिन है। 100 साल कोई बहुत लॉन्ग पीरियड नहीं है। एक साल में 365 दिन होते हैं, और 100 साल भी यदि हमारी उम्र हो गई तो कितना हुआ? 36,500 दिन हुए, और उसकी उल्टी काउंटिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है। और इसको थोड़ा और यदि कैलकुलेट, ये 36,500 दिन क्या टाइम है, कितना बड़ा टाइम है, उसको थोड़ा और यदि बेटर कैलकुलेट करें, यदि हम इसको घंटों में कैलकुलेट करें तो लगभग 9 लाख के आसपास घंटे हैं हमारे पूरे इस जीवन का। 8,76,000 समथिंग घंटे होंगे 100 साल के। तो कितना सा ये अनंत काल में से हमको ये मनुष्य जीवन के लिए टाइम मिला है? आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम। और ये जो 36,500 दिन थे उसमें से बता रहे रात्रौ तद अर्धम गतम, उसका क्लियर 50% सोने में चला गया, जो एकदम अनप्रेडिक्टिव टाइम है, जिसमें आप साधना के नाम से कुछ नहीं कर सकते हो, अपने कल्याण के लिए जिसमें कुछ नहीं करते। तो टोटल 50% हमारा टाइम ऐसे ही सोने में चला गया जाता है, ये प्राकृतिक नियम है। हम लोग सोच सकते हैं कि मैं तो 24 घंटे में 12 घंटा तो सो नहीं रहा हूं, शायद मेरा कुछ फायदा हो रहा होगा। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमने अपने बचपने में बहुत सारी, क्योंकि ये तो 100 ईयर का कैलकुलेशन हो रहा है ना, आज की उम्र का कैलकुलेशन नहीं हो रहा ना, ये तो एज ए होल हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो बालपने के कितने वर्ष तो हमने टोटली 24 घंटे में से 20-20 घंटा सो सो के बिता दिए। तो एज ए होल जब कैलकुलेट करेंगे तो 50% तो गया हमारा सोने में। तो 36,500 दिन थे उसका 50% माने कितने दिन हम सो गए? 18,250 दिन तो सोने में गया, वहां तो साधना के नाम से कुछ नहीं हुआ। कितना बड़ा काल हमारा, देखो ऐसा चला जाता है जिधर हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया कि ये बहुत साधना की दृष्टि से बहुत अनप्रेडिक्टिव टाइम है। कोई प्रोडक्ट साधना के नाम से वहां हम नहीं कर पाते। फिर हम सोच सकते हैं कि अभी तो बहुत टाइम बचा है। कितना बचा है? 18,250 दिन। भर्तृहरि बताते हैं, तस्या परम अर्धस्य परम अर्धम बालत्व वृद्धत्व। बाकी जो आधा बसा था 18,250 का जो आधा, माने 50 साल बसे, 100 साल में से 50 सो गए, बसे 50, 50 के जो 25 साल है, 25 साल का आधा पोर्शन साधना के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि वो बालपने में बीत गया। लगभग 12 साल 12.5 साल तक व्यक्ति क्या साधना करेगा, क्या ईश्वर है, क्या आत्मा है, उसका चिंतन विचार करने के लिए तो समझ में आएगा नहीं। और लास्ट वाले जो 12-13 साल है वो वृद्धत्व हो, आंखों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पेट में दर्द है, किडनी खराब हो गई है, घुटने रिप्लेस करने पड़ रहे हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वहां शांति से साधना हो नहीं सकती। तो 12-13 साल वृद्धत्व में चले गए, साधना के उपयोगी नहीं रहे, 12-13 साल बालपने में चले गए, तो 100 में से कितने साल चले गए ऐसे ही बिना साधना के? 75। 50 तो 100 के, और 50 बालपने में और वृद्धपने में। बसे कितने साल? 25 साल। और 25 साल में व्याधि, 25 साल भी रोगों से निरोग तो नहीं है, कुछ समय व्याधि का ट्रीटमेंट करने में चला जाता है। वियोग, कोई मर गया, कोई दूर देश चला गया, कोई अपना अलग हो गया, उसके लिए कुछ रोते रोते बीत जाता है। सेवा, परिवार बसाना है, बच्चों को बड़ा करना है, बिजनेस चलाना है, कुछ समय इसमें निकल जाता है। तो अब साधक के पास टाइम बसा कहां जो वो ये चिंता करे कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है। यदि ईमानदार साधक है तो टाइम कहां है मुझे बताइए। महापुरुषों की कैसी दृष्टि होती है जीवन को देखने की बताइए। वो व्यक्ति एक एक क्षण जोड़ करके उसकी आंखों में आंसू हैं और वो विचार कर रहा है कि मैं कैसे साधना करूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और एक हम लोग हैं जो टाइम पास करने के लिए साधन खोजते हैं कि हम टाइम पास कैसे करें। कितना अंतर है हमारी दृष्टि में और साधक की दृष्टि में। तो ये जो पुत्रेष्णा से, वित्तेष्णा से, लोकेष्णा से ऊपर उठना है और साधना त्रय में जाना है, इसके लिए अब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, बल्कि हमको थोड़ी थोड़ी चोरी करनी पड़ेगी। हमको थोड़ी चोरी करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम बहुत कम हो गया। थोड़ा नींद से कम करना पड़ेगा, उधर से थोड़ा टाइम सुराना पड़ेगा। अब 12 घंटा में से 24 में से 12 सो नहीं सकता, जितना सो गया वो सो गया। अब बिजनेस से थोड़ा टाइम चोरी करना पड़ेगा, अब संबंधों से थोड़ा टाइम चोरी करना पड़ेगा, क्योंकि चोरी नहीं करेंगे, चोरी करने का मतलब उधर से यदि इधर एडजस्ट नहीं करेंगे तो देखते 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 उम्र बीत जाएगी। और देखते देखते हम खाली हाथ चले। असल में हमारा साधना पीरियड बड़ा कम होता है, इसलिए हम लोग जो बहुत बार कंप्लेन करते हैं कि अरे इतने साल से साल तो दिखने में लगता है परंतु क्वालिटी टाइम कितना है, साधना का क्वालिटी टाइम कितना है। थोड़े दिन पहले की घटना है, एक दिन काशी में हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे, यहां आने से 15-20 दिन पहले होगा, पंचदशी का कुछ प्रसंग चल रहा था, ब्रह्मज्ञानी की निष्ठा कैसी होती है उसके ऊपर विचार चल रहा था कि उसको पूरा संसार मिथ्या दिखता है, ये निष्ठा यदि प्राप्त हो जाए तो समझना कि ज्ञान प्राप्त हुआ। मैंने गुरुजी से प्रश्न पूछा, प्रश्न क्या था, हल्का एक आक्षेप ही था। मैंने कहा कि मेरा तो 16 साल हो गया, पढ़ते पढ़ते 16 साल हो गया और आप जिस निष्ठा की बात कर रहे हो वो निष्ठा तो मुझे प्राप्त हुई नहीं, तो फिर क्या किया मैंने 16 साल में, मैंने क्या किया। और इसका मतलब ये भी था कि आपने हमसे क्या कराया 16 साल में, आक्षेप तो थोड़ा झलकता ही है कि मैंने क्या किया, तो माने 16 साल में हम लोगों ने क्या किया। तो थोड़ा गंभीर हो गए, गंभीर होकर के हमको पूछा कि अच्छा 24 घंटा में तुम कितना घंटा वेदांत चिंतन करते हो। 24 घंटा में तुम्हारा वेदांत चिंतन का टाइम क्या है, माने क्वालिटी टाइम क्या है जो तुम हकीकत में साधना में दे रहे हो। 16 साल में तुम बनारस में कहां घूम रहे हो, किधर स्नान करने जा रहे हो, कितना न्याय पढ़ा, कितना व्याकरण पढ़ा, वो तो वेदांत चिंतन नहीं ना है। कितना सो गए, कितनी यात्राएं कर दी, तुमने वेदांत चिंतन में कितना टाइम लगाया। ईमानदारी से हम लोगों ने जोड़ करके हिसाब निकाला तो बड़े मुश्किल से 2 साल और कुछ महीना निकला, जो 16 साल में मैंने वेदांत चिंतन के लिए टाइम लगाया, माने जो क्वालिटी टाइम है। तो उन्होंने फिर करके मेरे को प्रश्न पूछा कि तुम अपनी 2 साल की कमाई से सेटिस्फाइड नहीं हो क्या, 2 साल में जितनी तुम्हारी समझ बढ़ी है, जैसा तुमने जीवन को समझा है, संसार के प्रति जो तुम्हारा दृष्टिकोण आया है, क्या ये सेटिस्फैक्ट्री लेवल नहीं को टच नहीं करता है क्या। 2 साल का विचार करते तो ठीक ही लगता है, जितना एकदम जिस स्तर से मैं उठ करके आया और जितना मैंने वेदांत को और संसार को समझा।
तो ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये कि हमारा क्वालिटी टाइम साधना के नाम पर हम कितना खर्च करते हैं। हम साल जोड़ते हैं, अरे मैं 10 साल से सत्संग कर रहा हूं, कर रही हूं, मैं 20 साल से कर रहा हूं, मैं 30 साल से कर रहा हूं, ठीक बात है, हम तो कर ही रहे हैं, परंतु हमारा क्वालिटी टाइम उसके लिए हम कितना देते हैं। और आप एकदम विश्वास करके मानिए, जितना आप क्वालिटी टाइम उसको देंगे उसका रिजल्ट आएगा आएगा आएगा, ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते। ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी कमी है कि हम अपना क्वालिटी टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते, हम हॉल हार्टली इस काम को कर नहीं पाते, हम हॉल हार्टली इसको समझ नहीं पाते। इसलिए जीवन में साधना के नाम पर जो भी हमें करना है, प्राय मैं एक शब्द का प्रयोग करता हूं आरंभ में ही, कि हम लोग ईमानदारी पूर्वक ये चिंतन कर रहे हैं कि हमारा जीवन धन्य कैसा हो। तो ये बार बार जो मैं ईमानदार शब्द का प्रयोग करता हूं उसके पीछे मेरी फीलिंग यही है कि हम इसको बहुत सीरियसली और अपने मुक्ति का कारण और साधन समझ करके करें, नॉट एज ए रूटीन, एक रूटीन की तरह नहीं कि मैं आ गया भैया मुझे सत्संग सुनना है, एक घंटा दो घंटा सुनना है। यद्यपि आप सीरियसली करते हैं, गंभीरता से गंभीर साधक करते ही हैं, फिर भी हमें पुनः पुनः बार बार इस चीज को याद रखने की जरूरत है कि मेरा चिंतन ईमानदारी पूर्वक हो और मैं जो भी कर रहा हूं इस श्रद्धा के साथ करूं, इस विश्वास के साथ करूं, इस आस्था के साथ करूं कि ये मुझे मुक्ति तक पहुंचाएगा, ये मेरे लिए दरवाजा है, मेरे लिए अमृत है। इतनी श्रद्धा इतना विश्वास जब साधक अपने भीतर पैदा कर पाएगा तो जो भी साधक सुनेगा उसके प्रति मनन उसके दिल में पैदा होगा। हम लोग बहुत बार कंप्लेन करते हैं कि स्वामी जी सुन करके जाते हैं, बाहर निकलने के बाद सब धुल जाता है। ठीक बात है, आपकी जो वेदना और पीड़ा है वो मैं समझ सकता हूं और ईमानदार वेदना है, परंतु एक चीज मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा, ये चीज गलत है। एक साधक के लिए, एक ईमानदार साधक के लिए ये चीज बहुत गलत है। मैं यदि 15 साल से सत्संग कर रहा हूं, मैं यदि 20 साल से सत्संग कर रहा हूं और मैं यदि 30 साल से सत्संग कर रहा हूं और प्रेमपुरी के गेट के बाहर निकलने के बाद मेरे जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं रहता है तो मुझे बहुत पीड़ा और वेदना के साथ ये स्वीकार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं गलती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि डॉक्टर परफेक्ट हो, ठीक उसने रोग को आइडेंटिफाई किया हो, ठीक मेडिसिन लिखा हो और ठीक मेडिसिन को आपने ठीक तरह से प्रयोग किया हो और आप स्वस्थ ना हो, ये बात साइंटिफिक नहीं है, ऐसा नहीं होता है। और यदि आप बीमार हैं और आप वर्षों से औषधि खा रहे हैं और फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये गड़बड़ साधक के लिए बहुत, क्योंकि ऐसे ही हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, लंबा पोर्शन हमारे उम्र का इधर उधर चला जाता है, उसमें बहुत कम क्वालिटी टाइम बचता है, उसमें भी हम अपनी अविवेकता से यदि उसको मिसयूज कर दें, उसको लाइटली ले लें, उसको हल्के से ले लें तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम बड़े ऊपर के स्तर पर जी जाएंगे, फिर हो सकता है हम धीरे धीरे सत्संग को भी अनास्था से देखने लग जाएं, शास्त्रों को भी अनास्था से देखने लग जाए, समझने लग जाए कि केवल कोरी बातें हैं, कुछ होता नहीं है। मैं आपको बड़ी विनम्रता से और बड़ी प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं, यहां एक भी अक्षर फालतू नहीं है, यहाँ एक भी सिद्धांत तो फालतू नहीं है, यहाँ एक भी बात कोरी गप नहीं, और विशेषता अद्वैत चिंतन की धारा में और अद्वैत चिंतन के ग्रंथों में गुरु लोग एक पद लिखने से पहले 10 बार चिंतन करते हैं। अरे बाप रे बाप, मैं स्वामी जी को देखता हूं काशी में, जब वो कोई ग्रंथ लिखते हैं तो एक सेंटेंस को लिखने के लिए वो घंटों उसमें डूबे रहते हैं। एक बार मैंने उनसे कहा था, मुझे याद है, स्वामी जी ये आप एक पुस्तक लिखने के लिए इतना और कभी कभी तो मैं देखता था वो 2 बजे जग गए, 3 बजे जग गए, वो उस पंक्ति के लिए बैठ करके विचार कर रहे हैं, लिखने के लिए चिंतन कर रहे हैं, तो आप जो इतना माने, क्या आपके पाठक इस चीज को समझेंगे कि इस पुस्तक को लिखने के पीछे एक व्यक्ति की कितनी तपस्या है? उन्होंने कहा कि भैया, विद्वान एव जानाति विदुषः परिश्रमः। एक विद्वान ही दूसरे विद्वान के परिश्रम को समझता है। कोई विद्वान होगा, कोई जिज्ञासु होगा तो जरूर समझेगा, जानेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे गुरु लोगों ने जो साहित्य रचना किया है उसके भीतर अनास्था का प्रसंग ही नहीं उठता है, क्योंकि उनको कोई कविता लिखनी थी अथवा कोई अवार्ड प्राप्त करने के लिए बुक लिखनी थी इसलिए लिख करके रख दिया, ऐसी बात नहीं हो। उस समय तो कोई अवार्ड हुआ ही नहीं करते थे और वो अवार्ड के लिए लिखने ही नहीं थे। तुलसीदास ही तो घोषणा करता है, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं ये रघुनाथ जी की गाथा क्यों लिख रहा हूं, ये आपको दिखाने के लिए नहीं कि मैं कितना विद्वान हूं। स्वांत सुखाय, मैं अपने सुख को प्रकट करने के लिए कि इस तत्व को जानने से मुझे कितना आनंद मिला, इस तत्व के साथ एकीभूत हो जाने से मुझे कितना रस मिला, इस तत्व के साथ एकीभूत हो जाने से मैं कितने प्रेम में डूब गया। कदाचित वो आपको झलक जाए, इसके माध्यम से वो आपको दिख जाए। इसलिए शास्त्र का एक भी ग्रंथ का एक भी शब्द निरर्थक नहीं है और अर्थ से शून्य नहीं है। सत्संग का एक भी क्षण बेकार नहीं है। यदि सच्ची सत्संग हो और हमारी चेतना को जागृत करती हो और परम तत्व में प्रविष्ट कराती हो, फिर केवल कमी रहती है हमारे ईमानदार प्रयास की और परिश्रम की। हम ईमानदार प्रयास करें तो तुरंत फल मिलने लगेगा। भाई ये तो कोई देवता की आराधना नहीं है कि देवता के ऊपर डिपेंड करता है, वो कृपा करेंगे तब फल देगा, ऐसी बात नहीं। ये तो दृष्ट फलक है, इसका फल दृष्ट है। सत्संग का फल कोई लोकांतर की प्राप्ति और अदृष्ट फल नहीं है कि आप जब मरेंगे तब मिलेगा। सत्संग का फल है इसी समय इस क्षण आपके जीवन में शांति आनी चाहिए। सत्संग का काम आपको स्वर्ग में पहुंचाना नहीं है, ये सत्संग की ठेकेदारी नहीं है। सत्संग का केवल इतना ही ठेका है कि अभी इसी समय और जिस परिस्थिति में आप खड़े हो उस परिस्थितियों में आपका मन शांत निस्तब्ध और निस्तरंग होना चाहिए। और ये दृष्ट फल है, इसको अनुभव करने के लिए शरीर को छोड़ के स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। और वो फल यदि हमें यहां दृष्ट रूप से अनुभव नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर गड़बड़ है। इसका हम सब साधक एक ईमानदार अवलोकन करें और हमारे पास समय बहुत कम है, बहुत समय तो ऐसा जा चुका है। आज जब मैं तो विचार कर रहा था तो मेरे मन में ऐसा चिंतन आया, एक गिरीश भाई को बताऊंगा कि आप तो बहुत घूमते रहते हैं, बाहर देखते हैं बड़ी बड़ी चीजें, एक ऐसा घड़ी कोई हो तो मुझे दीजिए कि जिसमें टोटल टाइम सेट कर दूं और उसका जो उल्टा गिनती शुरू होता है वो शुरू हो जाए और मुझे पता चलता रहे कि कितना चला गया। क्योंकि जब कोई बड़ा लॉन्च करना होता है ना, मंगल पे ग्रह को पहुंचना, तो उसकी काउंटिंग शुरू होती है, डाउन काउंटिंग ना, उल्टी गिनती शुरू होती है ना, तो रिवर्स काउंटिंग होती है। तो हमारे को भी कोई यदि एक ऐसा यंत्र मिल जाए जो प्रतिदिन दिन में एक बार दिख जाएगी कि उल्टी काउंटिंग कहां तक पहुंच गई। हम लोग घड़ी बांधते जो असल में सीधा चलती है। हमको असल में सबसे ज्यादा जरूरत है उल्टा चाहिए और हमारी काउंटिंग बता दे कि इतना गया, अब केवल इतने घंटे और इतने ही दिन बचे हुए हैं। तो साधकों को इतनी ईमानदारी से अपने उल्टी काउंटिंग का ध्यान रखना चाहिए कि मेरी काउंटिंग उल्टी चल रही है, अब आईसीयू में हूं मैं, और ये उल्टी काउंटिंग भी कब तक चलेगी इसकी और कोई गारंटी नहीं। ये तो 100 साल मान करके ये उल्टी काउंटिंग को हम तोल रहे कि भाई अभी हमारा इतना दिन बाकी है, तो 100 माना हमने, ये फैक्ट है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो ये उल्टी काउंट तो कभी भी बंद हो सकती है भैया। ऐसे में हम यदि सजग न हुए, सावधान न हुए, ईमानदार न हुए, तो शायद साधना के क्षेत्र में हम बहुत अधिक गहराई तक नहीं जा पाएंगे। तो ये जो विषय मैंने उठाया था, त्यक्त्वा एषणात्रयम् अवेक्षित मोक्ष मार्गाः, यहां पर एषणात्रय से साधनात्रय में जाने की साधना का उपदेश है, और ये उपदेश साधकों के लिए इसलिए दिया गया कि भैया अब जल्दी करो, अब और बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, हम सब ईमानदारी से उस तरफ अग्रसर हो, भगवान हमें शक्ति दे, गुरु हमें शक्ति दे, इष्ट हमें शक्ति दे। इसी पावन प्रार्थना के साथ मैं मेरी वाणी को यहां भगवान की शरणों में समर्पित करता हूं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।